2919 बल्ले बल्ले।
आदमी बुलबुला है पानी का,
द पोएट द राइटर द लेजेंड गुलजार लाइव इन कॉन्सर्ट अलॉन्ग विद टॉप बॉलीवुड सिंगर्स।
दिल ढूंढता
नाम भूल जाएगा।
फ्राइडे जुलाई 15th एट प्रेस्टिजियस रॉय थॉमसन हॉल, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, डोंट मिस इट। गुलजार्स इजाजत।
और पानी की बहती सतह पर
स्प्रिंग में गार्डनिंग सीजन अब शुरू हो चुका है कैरेटन सब्जी फार्म पर।
हर तरह के फल फूल और सब्जियों की पनीरी, चाहे लेने हो करेले,
भिंडी,
चप्पड़ कद्दू,
टिंडा,
हलवा कद्दू,
रामतोरी,
पालक,
सरसों का साग,
धनिया,
लहसुन के बीज,
प्याज की पनीरी,
प्याज के बीज और हर तरह के गार्डनिंग टूल्स,
पतली,
रम्बा,
कई,
मिट्टी, खाद और पॉटिंग मिक्स।
एट कैरेटन सब्जी फार्म 9058409000
0050 एयरपोर्ट रोड कैलाडन, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील के कॉर्नर पर।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 4165700157। जी हां, 4165700157।
जी
हाँ जी जी मज भाई। अच्छा जी, उज़्बेकिस्तान जो है जी, उसमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो अनाउंस कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार यहाँ पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। लोग कहीं भी खुश नहीं है
उज़्बेकिस्तान में,
उज़्बेकिस्तान में भी। हालांकि ये कितना ही ठंडा किस्म का मुल्क है ना। हाँ बिल्कुल ही, बेचारे बहुत ही मस्कीन लोग हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं शफकत मिर्ज़ियायेव जो हैं, वो कह रहे हैं जी कि बहुत सारे, उन्होंने कहा था कुछ अरसा पहले, ये एक इलाका है इनका कैराकल पाकिस्तान, वहां पे ये गए थे और वहां पे उन्होंने कहा था कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उज़्बेकिस्तान को जब से आजादी मिली हुई है ना, ये जो इलाका है वो अभी भी सेमी ऑटोनोमस है। तो ये जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस की वहां पे रिफॉर्म्स, तो लोग तो सड़कों पे आ गए। उन्होंने कहा जी आपको कोई हक नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो वहां पे गए हुए हैं, तो जो वहां पे चूंकि गए तो इन्होंने गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, लोगों ने प्रोटेस्टर्स ने उसके ऊपर पत्थर मारे और उसके अंदर घुसने की कोशिश की, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो फिर पुलिस ने इनको पीछे पुश करने की कोशिश की, तो ये फिर वहां पे काफी प्रोटेस्ट चलते रहे। तो अब वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन्होंने अनाउंस कर दिया और उन्होंने कहा कि शट डाउन रहेगा कुछ दिन यहां पे। तो
मगर ये उज़्बेकिस्तान जो है वो रशियन इन्फ्लुएंस में है।
हाँ, रशियन इन्फ्लुएंस में है, लेकिन अब तो ये सारी जो है मुस्लिम स्टेट्स हो गई है ना, ये सारी अब कट गई है ना उससे, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाइजान, ये जान 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 वाली जो थी सिक्स स्टेट्स, ये जो आ गई थी यहाँ पे, तो ये उनमें से एक स्टेट है। तो ये बड़े ही माइल्ड तबीयत के लोग हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई, तो ये इसलिए ये बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों की नजर गई कि ये तो बड़े माइल्ड तबीयत के लोग हैं, कैसे इनको अचानक से क्या हो गया, यूक्रेन का असर हो गया ऐसे है। इसी तरह जी स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है साउथ वेस्टर्न सिडनी के अंदर जो है वो भी अब अनाउंस की गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसकी वजह यह है कि वहां पे लैंड स्लाइडिंग हो रही है और बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो रही है, और यहां पे उन्होंने अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि अगर आपको ये लग रहा है कि 2021 जैसे हालात हैं, वैसे हालात नहीं है, यहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आने वाले हैं, तो आप इन इलाकों से जो है वो निकल जाएं। ये साउथ वेस्टर्न सिडनी का जो एरिया है जी, यहां पे इमरजेंसी सर्विसेज के जो हेड हैं स्टीव कुक, बल्कि मिनिस्टर ही हैं ये वहां पे न्यू साउथ वेल्स में, उनका कहना है कि फौरन लोग जो हैं यहां से निकलें इस इलाके से, सिडनी से, और जो है शेल्टर जाके लें दूसरे इलाकों के अंदर। आपको पता ही है कि ये ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिटी है, तो यहां पे बहुत दिनों से बहुत टोरेंशियल रेन्स चल रही हैं, तो गाड़ियां अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां बिल्कुल ही सबमर्ज्ड आपको नजर आएंगी उसके अंदर, और काफी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। कैन यू इमेजिन माजिद भाई कितनी यहां पे बारिश हुई है? अकॉर्डिंग टू द मेट डिपार्टमेंट 13.8 इंचेस,
नॉट मिलीमीटर,
नॉट इवन मिलीमीटर्स, 13.8 इंचेस।
तो दैट्स फ्लडिंग
ना, तो वो यही कह रहे हैं, लोगों को यही कह रहे हैं कि अब आप ये नई टाइप की एक्सपीरियंस करेंगे फ्लडिंग यहाँ पे, तो निकल जाएं इन इलाकों से। तो यहाँ पे भी जी स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो अनाउंस की गई है। अच्छा जी, कैपिटल मार्केट से एशियन शेयर मार्केट्स जो हैं वो अब बहुत ही कॉशियसली मूव कर रही हैं, क्योंकि यूएस के अंदर चीजें जरा थोड़ी सी वॉलिटिलिटी की तरफ जा रही हैं, और ये जो इन्होंने कहा है जी कि जून में जो ये पेरोल रिपोर्ट आई थी, इसने सजेस्ट किया था कि डाउनवर्ड रिस्क जो है वो आ सकता है है और इसलिए कि यूएस जो है थोड़ा सा चल रहा है उसकी तरफ रिसेशन की तरफ। तो इसमें उन्होंने कहा है जी कि ये जो सारी सर्च इन्होंने की है, उन्होंने कहा जी कि 10 ईयर यील्ड्स जो हैं दे वर होल्डिंग अराउंड 2.88% विच इज वेरी लो, आई मीन ऑफकोर्स जो कि आप देख ही सकते हैं, और इसीलिए जो है ये दिस फेल बाय 61 बेसिस पॉइंट्स। तो ये काफी जो है पतली चल रही हैं हालतें। वो कह रहे हैं जी एम एस सी आई जो है ब्रॉड सेट इंडेक्स ऑफ एशिया पैसिफिक शेयर्स आउटसाइड ऑफ जापान दे वर इंचिंग टूवर्ड्स 0.3%।
एंड वट एवर हैपन्स अमेरिकन इकॉनमी एंड जितने भी यहाँ पर डाउ जोन्स एंड टेक सेक्टर जो है हमारा नैसडैक का जो यहाँ पर होता है उसका असर पूरी दुनिया पे होता है, नॉट ओनली इन अमेरिका,
नॉट इन यूएस ओनली। एंड S&P 500 एंड नैसडैक फ्यूचर्स जो है दे ईज्ड एट 0.4%। एवरी S&P 500 सेक्टर बॉय एनर्जी सॉ नेगेटिव रिटर्न, वो कहते हैं सो इट्स वेरी वेरी यू नो हाईली एक्सट्रीमली वॉलेटाइल जो मार्केट है उसको वो कहते हैं। ओहायो का जो आर्कॉन का सिटी है जी, एक्रॉन का जो सिटी है, यहाँ पे भी जनाब स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस की गई है। उसकी ऑब्वियस ही वजह है कि यहाँ पे वो जो शूटिंग हुई है उसकी वजह से, और वो हुआ ये है कि और यहाँ पे तो कर्फ्यू भी अब लगा दिया गया है, और उसकी वजह यह है कि एक ब्लैक जो बच्चा था उसको जो है गोलियां मारी गई हैं और उसको मारा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है जी कि इसके पास गन थी और इसने हमारे ऊपर एक राउंड चलाया था, लेकिन राउंड चलाते चलाते ये हमारे सामने आ गया और हमने रिएक्शन में जब इसको मारा तो इसको लगी। अच्छा, पुलिस का कहना है कि कोई हमने जो है 8 के करीब शायद गोलियां चलाई होंगी। जब उसके बच्चों को देखा गया तो उसके वूंड्स जो थे वो 60 वूंड्स थे उसके अंदर। तो उसकी वजह से लोग जो हैं आज सड़कों के ऊपर हैं वहां पे ओहायो के अंदर, और यहां पे जो है व्हाइट हाउस का जो स्टेट डिपार्टमेंट जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने और सिविल जो राइट्स डिवीजन है और FBI जो है वो कह रहे हैं जी हम बहुत क्लोजली इसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि ये जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या हो रहा है। तो ये काफी आज लोग जो हैं सड़कों के ऊपर लेके खड़े हुए थे प्लैक कार्ड्स, पता नहीं आमिर क्यों नहीं दिखा रहा तस्वीर, वो उसमें सारी आप जनता देखेंगे सड़कों के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। वाशिंगटन पोस्ट की आज एक रिपोर्ट है जी, और वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट जो है दिस इज सो सैड। आज आपको पता है ना 4th of July है और उनका इंडिपेंडेंस डे है, तो आज की ये जो वाशिंगटन पोस्ट की 4th of July की रिपोर्ट है ये कहती है कि ये मुल्क जिससे हम इतना प्यार करते हैं इसके सारे वैल्यूज और चीजें खराब होती जा रही हैं। कोई ना कोई या तो वायलेंस हो रही है या शूटिंग्स हो रही हैं या कहीं पे किलिंग्स हो रही हैं या कि अभी लेटेस्ट ये जो अबॉर्शन लॉज आ गए हैं जो कि हमारे पर्सनल फ्रीडम्स के अगेंस्ट हैं, तो ये अमरीका के अंदर क्या चल रहा है। तो वो इतना वो ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है, वो कहता है जी वैसे ये जो राइटर हैं ये कहते हैं मैं तो वैसे तो लिखना चाहता था एक सेलिब्रेटरी किस्म का एक कॉलम लिखना चाहता था। आमिर वो जो 4th of July की पिक्चर है प्लीज वो दिखा दें। तो वो जी वहां पे वो कहने लगे जी कि ये हम मैं लिखना चाहता था एक सेलिब्रेशन का आर्टिकल और उसमें मैं दिखाना चाहता था कि हम कैसे सेलिब्रेट करते थे यहाँ पे अमेरिका में और कितना हम जो है वो खुशी मनाते थे।
इट्स टोटली डिफरेंट।
हाँ जी हाँ जी। तो वो कहते हैं जी कि ये जो हमारा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था इसके वैल्यूज हैं, हमारे वैल्यूज हैं, हम उसको जो है बड़ा चीयर करता था, जो नेशन थी वो बड़ी चीयर करती थी, और मैं भी ये कहता था कि 246 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री जो है उसमें कितना कुछ हमने अचीव किया है, कितनी कुछ हमने यहाँ पे इक्वालिटी और लव एंड कंपैशन और कैसे लोगों को ओपन आर्म्स के साथ हम यहाँ पे बुलाते रहे हैं, लेकिन अब जो और कैसा हमारा रोबस्ट किस्म का कल्चर था, डेमोक्रेटिक लोगों की एस्पिरेशंस थी जो यहाँ पे आते थे, एनर्जी इंसेंटिव से यहां पे और बड़ी जबरदस्त, तो कहते हैं ये सब चीजें मुझे लग रहा है कि अब डाई आउट होती जा रही हैं। तो मैं बड़ा सैड हूं इस पे, ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल लिखा हुआ है, ये अपने बहुत ही सेंटिमेंटल है, बहुत ही सेंटिमेंटल है। तो आपने आज जनाब एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर काफी खतरे में नाक हो सकती है
जी,
है जी, क्योंकि आपको बताइए जब से यूक्रेन की वॉर हुई है तो यूएस की ने एक अपना स्टांस लिया हुआ है, पॉलिसी ली हुई है कि पैसे देंगे आपको हम भी, $7 बिलियन उन्होंने दिए हैं जी इनको कि हम आपको दे रहे हैं, इसके अलावा हम आपको इक्विपमेंट दे रहे हैं, आर्म्स दे रहे हैं, एम्युनिशन दे रहे हैं, लेकिन हमारा फौजी कोई लड़ेगा नहीं, राइट। अच्छा जी, ये अमरीका का स्टांस है, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है अमरीका बेशक जो गवर्नमेंट है वो नहीं भेज रही है लेकिन बहुत सारे वॉलंटियर्स जिनको के वॉर के टैक्टिक्स पता है कि नहीं भी पता है वो सारे अब यूक्रेन में पहुंच रहे हैं रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए।
सही।
वो कहते हैं जी न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट कहती है कि ये दे आर गोइंग एज यूएस स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनर्स, जो कि इन्होंने वियतनाम में भी किया था इन 1961 की वॉर में, लेकिन इस वक्त और उस वक्त में डिफरेंस यह है कि उस वक्त इनको जो थी ये स्पेशल यूएस ऑपरेशंस ट्रेनर्स जो थे इनको बैकिंग पेंटागन की थी उस वक्त, इस वक्त इनको यूएस गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। और यहां पे कॉन्स्टेंटली इनको यूएस कह रही है कि आप अवॉइड करें वहां पे जाना, आपने कॉम्बैट के अंदर नहीं हिस्सा लेना है, लेकिन फिर भी ये वहां पे सब लोग जा रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम जो है इनका हेल्प करेंगे। अच्छा, रशिया ने फिर उसमें क्या कहा है? रशिया ने कहा है जी कि वी विल ट्रीट देम एज मर्सनरीज, और अगर ये हमारे खिलाफ लड़ेंगे और अगर ये पकड़े जाएंगे तो हम इनको पकड़ेंगे भी, मारेंगे भी, एग्जीक्यूट भी करेंगे और जो कुछ हम कर सकते हो।
दे आर नॉट प्रिजनर ऑफ वॉर।
हाँ, दे आर नॉट प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बिल्कुल नहीं, इनको मार देंगे हम। अच्छा, अब यूएस तो डिस्करेज कर रहा है लेकिन ये लोग जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक एटलीस्ट 21 अमेरिकन जो हैं वो जब से वॉर शुरू हुई है वो वुंडेड हैं, 2 मारे जा चुके हैं, 2 को उन्होंने कैप्चर कर लिया है और जाहिर है कि उनको भी मार देंगे, उनका कोई फ्यूचर अब नहीं है, कुछ पता नहीं चल सकता है, और एक जो है मिसिंग इन एक्शन है। तो ये रिपोर्ट पूछ रही है कि भाई कितनी सेंसिबल है ये बात कि आप लोग जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी आपको मना कर रही है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बहुत इनको मना कर रहा है लोगों को कि जाके उधर लड़ना नहीं है आपने, हम ऑलरेडी दूसरी तरह से बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हम नेटो के ट्रुप्स जो हैं वहां पे अगर जाना होगा तो जाएंगे और हेल्प करेंगे उनकी, तो आप ना जाओ। लेकिन बस ये लोग अब नहीं सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि कहीं ऐसा सिचुएशन ना हो जाए कि जैसे वियतनाम में फिर इनको भागनी पड़ी थी अपनी जान बचा के, अमेरिकन्स को फिर से यहां से भी वैसा ही आए। द क्विंट की आज एक स्टोरी है और अगेन दिस इज अ रियल आई ओपनर, ये बड़ी ही इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। द क्विंट की ये स्टोरी है जी, वो कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में से बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसने 2 टेररिस्ट LET के पकड़े हैं, लश्कर ए तैयबा के, उसमें से जो एक आदमी है जिसका के नाम है तालिब हुसैन शाह, अलेजली उसके बारे में जो लोकल जो हैं लोग वो कह रहे हैं कि ये तो अपना खुद का बीजेपी का बंदा है, तो इसको अपने, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि इसकी तस्वीरें जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब उनके साथ भी हैं और जम्मू और कश्मीर के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रायना वो तो इनको फूल दे रहे हैं, तो वो उनकी साथ तस्वीरें हैं। तो ये जो यहां पे जब इस पे इन्होंने इनको पकड़ा, इसके साथ एक और लड़के को भी फैसल अहमद डार को, ये कह के कि ये लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट हैं और इनके पास से 2 AK राइफल्स और 7 ग्रेनेड्स और स्टिकी बॉम्ब्स और एम्यूनिशन और आर्म्स लिया है। तो जब लोगों ने इसकी तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा जी ये तो बीजेपी के IT सेल में काम करता ही जो, तो ये तो बीजेपी का हिस्सा। तो यानी ये क्या हो रहा है, यानी आप अपने बंदे खुद ही ट्रेन कर रहे हैं और फिर मुसलमानों को बैड नेम देने की कोशिश कर रहे हैं, वाट इज गोइंग ऑन, ये अब लोगों का वहां पे जो है वैसे हुआ। इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जी, उन्होंने आज फिर से एक जो अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ जो बुरा सलूक हिंदुस्तान में किया जा रहा है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अधीराम बागची, उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्ट जो आई है इसकी इंडिया की इंतहाई गलत है, और वो कहते हैं जी कि आपको ये इसके हमारे मुल्क के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि हम रिलीजियस फ्रीडम्स जो हैं यहां पे देते हैं, आपकी जो है रिपोर्ट बायस्ड है, इनएक्यूरेट है एंड रिफ्लेक्ट सिवियर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, प्लुरैलिटी एंड डेमोक्रेटिक ईथॉस। ये जो रिपोर्ट आई है यूएस की ये है, दिस इज पब्लिश्ड बाय कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स, जिसके के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा चिंता जताई है कि रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि उन्होंने और भी कुछ 11 कंट्रीज जो हैं उनका नाम लिया है जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। तो वो कहते हैं जी इन सब मुल्कों के अंदर रिलीजियस है, तो ये इन्होंने जी भारत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की है उसने बड़ा इसके ऊपर जो है वो उठाया है, आवाज उठाई है और कहा कि ये फैक्चुअली गलत है, आपकी सारी रिपोर्ट सही नहीं है। PTI की न्यूज है एंड अगेन दिस इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके मुताबिक जो मणिपुर का जो एरिया है वही जो स्टेशन का एरिया रेलवे स्टेशन का जिसकी कि हम आपको फ्राइडे से जिसकी खबर सुना रहे हैं, उधर अब डेथ टोल जो है वो 42 पे रीच कर गई है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड कांस्टेंट जो वहां पे बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से। वो कहते हैं वहां पे रेस्क्यू का काम जो है वो तो चल रहा है लेकिन डेब्री के नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, और वो कह रहे हैं जी कि 8 बॉडीज तो हमने निकाल ली हैं, 20 जो हैं अभी भी मिसिंग हैं और जो है इसके अंदर ज्यादातर जो लोग थे टेरिटोरियल आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो थे, और 15 जो थे दूसरे थे रेलवे के और कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स थे और विलेजर्स थे। तो ये बारिशें जो कॉन्स्टेंटली हो रही हैं उसकी वजह से वो बॉडीज निकालनी वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, ये एक रिपोर्ट आई थी जी एक वेबसाइट पे ग्लोबल विलेज स्पेस के ऊपर, और उन्होंने कहा था जी कि ये जो गवर्नमेंट है इसके साथ IMF डील नहीं करना चाहता, और वो कह रहे हैं कि तुमको अपने जो नैब के तमाम ये जो अपने लॉज चेंज कर दिए जिसमें कि आपने कहा जी कि अगर कोई बंदा जो है वो उसके खिलाफ इतने दिन तक वो मिलेंगे नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे, तो ये तो उसकी वजह से IMF जो है वो हट गया, और उसने कहा कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी आप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो हम आपके साथ डील नहीं करना चाहते। मुफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत रिपोर्ट्स हैं, IMF के जो लोन प्रोग्राम्स हैं वो कोई पोस्टपोन नहीं हुए हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं, और इसलिए जितनी भी ये रिपोर्ट्स डाली जा रही हैं ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। एडवाइजर ऑन कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा साहब जो हैं, इन्होंने आज पावर लोड शेडिंग के ऊपर बात करते हुए कहा है कि 2000 किलो वाट्स जो हैं वो अब नेक्स्ट वीक से एंटर हो जाएंगे नेशनल ग्रिड के अंदर, उसकी वजह से पावर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, और वहां पे इन्होंने बात करते हुए कहा कि मीटिंग हमारी कैबिनेट की हो गई है, और उसमें हमें बताया गया है कि पानी का काफी फ्लो है तरबेला डैम के अंदर, जिसकी की वजह से 2000 मेगावाट जो है वो एडिशनल चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रल एनर्जी जो है सिस्टम में एंटर होएगी और लोगों की ये जो दिक्कत है खत्म होएगी। इसी मौके पर इस्लामाबाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ पावर गुलाम दस्तगीर खान जो है उन्होंने भी बात करते हुए कहा कि नेक्स्ट 4 to 6 days, अब आप देखें डेज आप देख लें 4 to 6 days बिफोर ईद उल अदा तरबेला के अंदर काफी जो है वो पानी आ गया है। तो इनका तो कहना है जी कि इन्होंने तो कमर जमान कायरा को भी पीछे छोड़ दिया, वो कह रहे हैं 2000 मेगावाट, ये कह रहे हैं 3500 मेगावाट जो है बिजली बनेगी, जिसकी की वजह से लोड शेडिंग तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर रह जाएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप खुद सोचें। फवाद चौधरी साहब हैं जी, वो बड़े गुस्से हो गए हैं क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा जी PTI ने हाथ जोड़ के डोनाल्ड लू जो कि US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसके ऊपर इल्जाम लगाया था इमरान खान ने कि इसने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट हटाई है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इन्होंने हाथ जोड़ के उससे माफी मांगी है, और चूंकि हाथ जोड़ के माफी मांगी है तो अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने बहुत लैश किया इस कॉमेंट को और उन्होंने कहा है कि आपने बिल्कुल गलत काम किया। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे जो नई स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनानी है उसके बारे में आप कानों में कहीं रुई डाल के तो नहीं बैठे हुए थे, या आप कहीं बहरे तो नहीं, हैव यू गॉन डेफ, इनके ये स्टेटमेंट थी कि आप बहरे तो नहीं कहीं हो गए हैं। ये हजारों लोगों के सामने परेड ग्राउंड के में सैटरडे के दिन उन्होंने कहा है कि जी हम जो है इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने एक सिटिंग गवर्नमेंट को हटा के एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को बिठाया है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने इनके ऊपर और भी इल्जाम लगाए थे कि जब अब इनकी अमेरिका के साथ डील हो जाएगी तो ये USA जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, और अगर ना हुई तो फिर ये USA मुर्दाबादी करते रहेंगे। तो उन्होंने फवाद चौधरी ने कहा हम USA मुर्दाबादी करते रहेंगे क्योंकि हमारी कोई डील हुई नहीं। My God, these guys in Pakistan, they are such... क्या कहें के बारे में?
Jokers.
Yeah, I know. अच्छा जी, इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज फिर से चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा जी आपके सामने ये जो इलेक्शन बिल लाया गया है और उसके अंदर चेंजेस की गई हैं, इलेक्शन एक्ट 2017, वो जो हमने सारी रामलीला की यहां पे कहानी सुनाई थी कि इन्होंने अमेंडमेंट्स कर दी जिसमें कि कहा जी तुम खाओ पियो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें कुछ पकड़ा नहीं जाएगा। वो आरिफ अलवी साहब के पास गया था, आरिफ अलवी साहब ने उसको कहा मैं नहीं इस पर साइन करूंगा, फिर इन्होंने उनको छोड़ते हुए खुद ही सेनेट में से भी और अपर हाउस में से सारे दोनों जगह से लोअर हाउस से भी करवा के पार्लियामेंट से भी यानी और सेनेट से भी अप्रूव करवा के फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा, फिर प्रेसिडेंट ने दूसरी दफा उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। उसके ऊपर इमरान खान साहब आज बड़े भड़के हुए थे, उन्होंने कहा जी कि इसमें और तो गलत बातें हैं ही हैं लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका के फंडामेंटल राइट है वोट डालना, जिसकी की वजह से जिनके के पैसे की वजह से ये मुल्क चलता है, उसको आप वायलेट कर रहे हैं और ये चेंजेस जो है बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये इनको जो है आपको देखना, तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि आप इन चीजों का जो है नोटिस लें कि कैसे आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि पैसा तो उनका आपको चाहिए लेकिन उनका वोट नहीं चाहिए आपको, ये हाउ इज दैट पॉसिबल, तो उनको राइट ऑफ वोट जो है वो दें। अच्छा जनाब, आज तो बहुत ही मेजर एक अनाउंसमेंट की है पंजाब के चीफ मिनिस्टर हमजा शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा जी हर वो गरीब बंदा, अब हर कोई गरीब बन जाएगा यहाँ पे, सारे इनके मिनिस्टर गरीब हो जाएंगे है जी, जो जो 100 जो यूनिट्स यूज कर रहा है बिजली के उससे एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा, उसको मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो अब इस लिस्ट में सारे जो है पंजाब के मिनिस्टर आने वाले हैं,
बहुत इनके पास
बहुत बैड। वो कहते हैं जी इस चीज के लिए गवर्नमेंट हैज सेट असाइड 100 बिलियन रुपीज और इससे जो है फायदा होएगा 9 मिलियन हाउसहोल्ड्स को, जिसके अंदर इनके भी मिनिस्टर होंगे क्योंकि वो कहेंगे हम बहुत गरीब हैं, हम पैसे नहीं दे सकते हैं जी। तो वो कहते हैं जी कि ये सारी चूंकि मुझे चीजें पता है कि चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो एटलीस्ट हम उनको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है थोड़ी सी छूट देना चाहते हैं, और ये बड़ा वैसे मैं कहती हूं अच्छा काम है अगर वाकई ये गरीब तक पहुंचे तो, अगर इनके मिनिस्टरों तक पहुंचा तो फिर तो फायदा नहीं है, लेकिन तो आज उन्होंने जी ये अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि ये बर्डन जो है हम गरीब लोगों पे हटाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि फिर से वही जो है मांगने वाली बातें कि IMF और इंटरनेशनल डोनर और फ्रेंडली कंट्रीज आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हेल्प करेंगे तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। अच्छा जनाब, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, वो बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आए और उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मिसिंग पीपल का मसला हल ना किया तो मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाऊंगा। तो आज उन्होंने कहा कि मैं वार्न कर रहा हूं फिर से आपको कि अगर जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज कंसर्न बल्कि जो हैं, अगर उन्होंने मिसिंग पीपल जो हैं पर्सन्स का मसला हल ना किया तो मुझे प्राइम मिनिस्टर को बुला के उसको डायरेक्टली ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। उन्होंने यहां पे क्वेश्चन करते हुए जो डेप्यूटी AG थे, जो अटॉर्नी जनरल थे, उनसे पूछा कि इनके साथ इनके बारे में क्या किया जा रहा है, कितने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, क्या हो रहा है। तो डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी 8400 लोगों में से 600 बंदा अभी भी मिसिंग है। तो इन्होंने अतर मिनल्ला साहब ने कहा तो तुम लोग जो है पुलिस को किस लिए रिक्रूट करते हो, तो पुलिस क्यों क्या काम कर रही है, वो क्यों नहीं इनको कर रही, क्योंकि वो उनकी जो फैमिलीज हैं बड़ी परेशान है यहां पे। फिर जो फरतुल्ला बाबर साहब थे उन्होंने कहा जी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इनको उठाता कौन है और कौन किधर लेके जाता है। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा भाई साहब आप कौन है जो बीच में बोल रहे हैं। तो नसीर उसने फरतुल्ला बाबर ने कहा जी मैं PPP का लीडर हूं। उन्होंने कहा अच्छा अगर आप PPP के लीडर हो तो आपकी गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, आप अपनी गवर्नमेंट में क्या कर रहे थे, आपके गवर्नमेंट के दिनों में भी ये मिसिंग पर्सन का मसला था, आपने क्या किया। तो उसका कोई जवाब नहीं था फरतुल्ला बाबर के पास, जाहिर है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कोर्ट ने कहा कि ठीक है अगर आपको इतनी तकलीफ है फरतुल्ला बाबर साहब और वो एडवोकेट आबिद नजीर जो है, उन्होंने कहा ठीक है देन यू वर्क एज कंसल्टेंट्स विद द कोर्ट और अब आप मुझे अपडेट्स देते रहेंगे कि इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट काम कर रही है। मुंह खोला और फंस गया ये पाकिस्तान का जैसन कैनी बन गया। तो बस जी उसके ऊपर खींच लिया। अच्छा जनाब, आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के जनरल कमर बाजवा साहब, उन्होंने फिर से जितने भी अपने कोर कमांडर्स हैं उनको, जो की ऑफिशियल्स हैं और ISI के जो बंदे हैं, उनको कहा है स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, किसी पॉलिटिशियन के साथ ना तो आप दिखें और ना आपने इंटरैक्ट करने, सिर्फ फोन कर सकते हैं। नहीं नहीं उन्होंने कहा बिल्कुल इंटरैक्ट किसी के साथ भी नहीं करना है, क्योंकि PTI वाले खासतौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी और भी कुछ लोग जो हैं PTI के, वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस अपकमिंग बाय इलेक्शंस हैं उसके अंदर कुछ अनदेखे हाथ इनविजिबल फोर्सेस जो हैं वो ये रिग कर सकती हैं PTI को हराने के लिए। तो इन्होंने आज कहा है कि खबरदार कोई मिलिट्री का कमांडर मुझे किसी पॉलिटिशियन से मिलता हुआ नजर आया नजर ना आए।
इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में नए तालीमी साल के लिए फुल टाइम हिव्स और संडे स्कूल के लिए एडमिशन का आगाज हो चुका है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज रीजन के टॉप रेटेड एलिमेंट्री स्कूलों में से एक है, जहां ओंटेरियो सिलेबस के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज, अरबी और कुरान शामिल है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में ब्लेंडेड करिकुलम, क्वालिफाइड स्टाफ, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, जिमनेजियम, लाइब्रेरी, साइंस लैब जैसी खसूसियात मौजूद हैं। एडमिशन के लिए अभी कॉल कीजिए 519-740-6855,
ISOCambridge.com। ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मोईशत की तरक्की का जामिन,
आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी, क्विक ट्रक लियो 519-622-0660, quicktrucklube.com।
Muslim Welfare Center, service to humanity is service to Allah.
मुस्लिम वेलफेयर सेंटर दुनिया भर में मुस्तहिक लोगों की मदद करने में गामजन। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के साथ कुर्बानी कीजिए या फिर अपना हिस्सा शामिल कीजिए। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 1-866-754-3111, 1-866-754-3111।
जी अच्छा जी, ईद उल अदहा पाकिस्तान में आने वाली है और किसी जमाने में पाकिस्तान की बड़ी तारीफ हुई थी कि कोरोना वायरस को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जो है वो रोका है। जो WHO था वो कहता था कि नेशनल जो अगर पॉजिटिविटी रेट 2 से कम है, जो कि पाकिस्तान का हमेशा ही पिछले 3.5 साल में 2 से कम रहा है, वो जनाब अब 4.6 यानी 5% को टच कर रहा है पॉजिटिविटी रेट। ईद उल अदहा और मुहर्रम भी आने वाले हैं तो इसके लिए जो है फेडरल हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादर पाटिल जो है वो कह रहे हैं जी कि NCOC जो है नेशनल यानी कमांड एंड कंट्रोल जो है वो उसको मॉनिटर कर रहा है और ये असल में ये जो नया वेरिएंट आ गया ना BA.5 उसकी वजह से ये चीजें जो है खराब हो रही हैं। मेरा कसूर नहीं है, है? अपने आप को ये कंपेयर कर रहे हैं डॉक्टर सुल्तान के साथ, पायान उसकी डिग्रीज देखो और अपने आप को आप देखो है जी, पता नहीं किधर से आगे हुआ। अच्छा जी बहरहाल जी, तो ये मुल्क के अब हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और इसमें काफ़ी जो है वो फैल रही है चीज़, खासतौर पे जो कराची है, कराची में तो बेताजा फैल रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ पे अगर सिंध के चीफ मिनिस्टर चाहेंगे तो वो शायद SOPs फिर से करें। एंड जनाब ट्रांटो के अंदर जो सैटरडे को एक बड़ा ज़बरदस्त बैक स्ट्रीट बॉयज का कॉन्सर्ट चल रहा था, अचानक उसके अंदर एक और बड़ा स्टार आ गया। वो बड़ा स्टार था हमारा कनेडियन ड्रेक, वो भी आ गया इनके साथ जी स्टेज के ऊपर। तो सारे लोग जो हैं वो बड़े हैरान हो गए और ये इनका 6th बडवाइजर स्टेज इन ट्रोनो जो कॉन्सर्ट हो रहा था बैक स्ट्रीट बॉयज का, लोग बड़े मजे ले रहे थे और अचानक से ये आ गया। वो लोग अपना हिट 1999 का गाना गा रहे थे आई वॉन्ट इट दैट वे, और ये जो रैपर हैं हमारे ड्रेक ये उधर पहुंच गए, उन्होंने वहां पे उसके साथ मिक्स किया और ब्लेंड किया वी आर गोइंग होम वो करके गया, तो लोगों को बड़ा मजा आया। आपको पता ही है कि बैक स्ट्रीट बॉयज जो हैं DNA वर्ल्ड टूर के ऊपर हैं और ट्रोनो में उनका इट वाज पार्ट ऑफ दैट टूर। दीपिका पादुकोण जो हैं वो थी सेंट होजे में और वहां पे हो रहा था एक इवेंट जो कि ये अटेंड करने, कोंकणी कम्युनिटी का एक इवेंट हो रहा था, वो अटेंड करने के लिए गई थी अपने मियां के साथ रणवीर के साथ। तो वहां पे ये चीफ गेस्ट थी, वहां पे कुछ लोगों ने आवाजें करनी शुरू कर दी वी लव यू वी लव यू, तो दीपिका ने जरा शरारत में कहा, उन्होंने कहा या थैंक यू बट नाउ आई एम अ मैरिड वुमन, तो शलवार कमीज में वहां पे अपनी ट्रेडिशनल लुक में जो है वो देखी गई। एंड जनाब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो मिस मार्वल नई सीरीज आई है इसको बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं और गाने भी इसके बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन आज इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त जो है कुछ रेवलेशन आए हैं। यहां पे जो म्यूजिक कंपोजर हैं आतिफ अफजल, उनके जो दो गाने आप इसमें नजर आ रहे हैं स्पेशली ए खुदा जो है वो बड़ा फेमस हो रहा है, वो कह रहे हैं जी बेसिकली मैंने ये गाने जो थे सलमान खान की एक फिल्म के लिए बनाए थे, तो लेकिन उधर वो जो था अप्रूव नहीं हुए थे, तो 10 से 15 गाने फिर मैंने इनको मिस मार्वल के लिए भी दिए थे, उसमें से इन्होंने मेरे ये दो गाने स्पेशली ए खुदा जो है वो किया है। तो वो कहते हैं जी कि मैं तो समझ रहा था कि सलमान खान की फिल्म में मेरे गाने आएंगे तो मैं बहुत बड़ा जो है वो डायरेक्टर बन जाऊं, म्यूजिक डायरेक्टर बन, लेकिन इससे भी बड़ी देखो अल्लाह ने मेरे लिए चीज रखी हुई थी क्योंकि अब ये मिस मार्वल के अंदर ये मेरे दोनों गाने आ गए। एंड जनाब मधुबाला की जो बहन है उन्होंने आज बड़े रेवलेशन किए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये मधुबाला की शादी हो सकती थी, देवर वेरी क्लोज मधुबाला एंड दिलीप कुमार उनकी शादी हो सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि मधुबाला के जो वालिद साहब थे यानी कि हमारे वालिद साहब जो थे उनकी बहन ने कहा, अताउल्लाह खान नया दौर की जब शूटिंग चल रही थी तो उनका जो डायरेक्टर था BR चोपड़ा वो कहता था रात को और सिटी से बाहर जाके देर देर तक शूटिंग करनी है, उसकी उन्होंने बेटी को इजाजत नहीं दी तो उसके लिए उनका बड़ा नुकसान हुआ, तो उन्होंने BR चोपड़ा ने 30,000 रुपीज के लिए उसके लिए डैमेजेस जो थे वो डाले थे। तो उसके लिए जब दिलीप कुमार को कोर्ट ने उन्हें टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि यस इनकी डील हुई थी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद फिर ये नहीं आती थी, उससे फिर इनकी लड़ाई हो गई। तो उन्होंने मधुबाला ने फिर भी बड़ा उनकी मोहब्बत थी दिलीप कुमार से, उन्होंने कहा तुम सिर्फ जाके मेरे बाप से सॉरी बोल दो तो फिर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो उनकी आज जो बहन है मधुर भूषण वो ये आज सारी बातें कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा जी ये शादी नहीं हो सकती थी।
अच्छा, इनकी बहन का नाम भी मधुर भूषण है।
वो भी हालांकि वो यानी कन्वर्ट हो गई होंगी ना, हिंदू हो गई होंगी क्योंकि बेसिकली तो ये लोग मुसलमान थे।
हाँ।
है ना, तो इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम था अताउल्लाह खान।
अच्छा अच्छा।
हाँ जी, अताउल्लाह खान था। और मधुबाला का भी कुछ और नाम था, मुस्लिम नेम था, मुमताज था शायद, मुमताज था इनका नाम असल तो, लेकिन इन्होंने चेंज कर लिया था, मधुबाला कर दिया था और इनकी बहन ने भी अब मधुर भूषण कर लिया अपना नाम। अच्छा जी, इंडियन हाई कमीशन ऑटवा के अंदर जो है उन्होंने कनेडियन अथॉरिटीज को कहा है कि एक डॉक्यूमेंट्री जो आ रही है वो उसके अंदर जो है वो काली का जो रोल किया जा रहा है उसके अंदर आपने हमारे जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं उनको हर्ट करने की कोशिश की है। ये एक पोस्टर जो है लीना मनी मैकालकलाई जो है उसका एक डॉक्यूमेंट्री का वो बनाया ये उन्होंने, और उसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि आगा खान म्यूजियम में ये पोस्टर लगा हुआ है कि एक जो इनकी माँ है वो सिगरेट पी रही है और पीछे जो है कुछ LGBT के झंडे भी नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने शिकायत की थी इनको, इंडियन हाई कमीशन को ऑटवा में, कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है डिसरिस्पेक्टफुल डिपिक्शन है हिंदू गॉड्स की, तो इसको आप हटाएं। तो उन्होंने कहा जी कि हमने अब इनको कहा है कि ये हटाया जाए, ये पोस्टर जो है अच्छा नहीं है। टॉम क्रूज ऑफ टर्न 60, कैन यू इमेजिन। और कल वो जो थे वो जो ब्रिटिश ग्रैंड प्री है वहां पे ये मौजूद थे और लोगों को बड़ा ग्रीट कर रहे थे और लोग भी इनको आगे से चीयर कर रहे थे बिकॉज ही टर्न 60। और फिर वहां पे ये जाके इनको बड़ा प्यार है, ब्रिटिश ड्राइवर जो है लुई हैमिल्टन उनसे फिर ये जाके मिले, हालांकि वो जीत तो नहीं सके लेकिन फिर भी उनसे जाके ये मिले तो लोग वहां पे बड़ा खुश हो गए। एंड जनाब, ब्रिटिश ग्रैंड प्री पे कार्लोस सेंस जूनियर 27-year-old स्पेनियर ही वन। ओ माई गॉड, आई वॉज अमेजिंग अमेजिंग। और वहां पे वो इतना बड़ा वो एक एक्सीडेंट भी हुआ फिर भी ये जो है ओ माई गॉड। तो ये कहते हैं जी ये मेरी फर्स्ट F1 विक्ट्री है, फॉर्मूला 1 विक्ट्री है इन 150th रेस के बाद। ये फरारी चला रहे थे और सर्जियो परेज जो हैं रेड बुल के वो सेकंड रहे। 7-time चैंपियन लुई हैमिल्टन जो मर्सिडीज में थे वो थर्ड नंबर पे रहे। कार्लोस लेक्रेक जो थे फोर्थ नंबर पे। 2-time चैंपियन फर्नांडो अलोंसो और लोनाडो लॉरिस ऑफ मैकलारन ये फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे रहे। और वर्ल्ड चैंपियन वर्स्टैपन जो थे सेवंथ पोजीशन पे रहे फॉर रेड बुल। तो ये इनको बड़ी खुशी हुई
फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड।
अमेजिंग, वाओ।
एंड इट वाज वेरी क्लोज,
वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। लेकिन ये है कि जैसे वो मैं उधर बैठी हुई थी फरारी आइलैंड में, यास मरीना में, अबू धाबी में, मैंने बड़े ही एक्सपेंसिव टिकट्स थे एंड आई रियली यू नो वो जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था हमारा उसको बेग किया, कहते हैं तुम प्लीज मुझे, तो मैंने F1 जाके रेसेस देखी। आई लव F1 रेसेस, आई लव दिस स्पोर्ट। तो लेकिन वहां पे जब आप बैठ के देख रहे होते हैं ना मजीद भाई, तो बस वो हर थोड़ी देर में जूम 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 ऐसे गाड़ी जाती है,
लेकिन साउंड ऑफ इट,
यस दैट्स राइट। आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा था कि जैसे वो हम टीवी पे देखते हैं ना गाड़ियां ऐसे सर्किट पे चल रही हैं। नो, द फन इज टू सिट एट होम एंड वॉच दैट। वो जो उधर सर्किट में बैठ के देखते हैं ना, कोई आधे घंटे के बाद जूम करके गाड़ी के, फिर आप बैठे हैं आधे घंटे, क्या करें क्या, फिर आधे घंटे जूम गाड़ी गुजरती है। तो बट सिटिंग एट होम एंड वॉचिंग दैट होम थिंग गो इन द सर्किट, दैट इज अमेजिंग। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल,
जस्ट लेट यू नो। अच्छा रहने छोड़,
अच्छा बस दो आखिरी खबरें हमारी रह गई हैं।
वो नहीं, वो कनाडा की जो यहाँ पर टोरंटो में जो था फर्स्ट रेस हुई थी ना, फर्स्ट रेस, तो उसके अंदर जो लीड कार है वो मैंने चलाई थी,
वो
आई ड्रोव इट।
ओह रियली,
अब ये साउंड की बात कर रही है ना, जब आपके साउंड की बात कर रही है ना, आई हैव पिक्चर्स।
ओके,
तो वो जो साउंड की बात कर रही है ना, साउंड जो है वो व्हेन यू आर देयर एंड यू लिसन टू दैट साउंड,
ओह यस,
दैट्स
अमेजिंग,
अमेजिंग,
दैट्स सच एन एक्सपीरियंस, यस। और आप सोचेंगे वो फरारी पूरा लैंड उन्होंने बनाया हुआ है एंड दैट्स सच एन अमेजिंगली ब्यूटीफुल सर्किट, वन ऑफ द वेरी फ्यू जो दुनिया में है जो इतने खूबसूरत है। एक मोनाको में है, ये है, जो बारेन में है वो भी बड़ा खूबसूरत है, बट दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। तो हमारा एनी वेज वो मुझे कोई इधर बैठ के खैर मजा नहीं आया, इतने मैंने वो बेग भी किए उनको इतना एक्सपेंसिव वो टिकट भी लिया वहां पे बैठा, क्योंकि मैंने पैसे तो कर दिए नहीं थे ना उसके हिसाब से। अच्छा जनाब, फोर एक्टिविस्ट जो हैं दे वर वेयरिंग, वेयर इज पेंग शुई, उसकी वो टी शर्ट पहनी हुई थी, आपको पता ही है ये चाइनीज वो टेनिस प्लेयर थी जिसको के फिर चाइना के ऊपर इसने कुछ किए थे, फिर उसने कहा था कि बड़े हाई प्रोफाइल ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक रूलिंग उस पार्टी का बंदा है जिसने कि मुझे सेक्सुअल असॉल्ट किया था, उसके बाद फिर ये बिल्कुल ही गायब हो गई, कोई इसने पब्लिक अपीयरेंसेज नहीं दी है। तो अब सब लोग पूछ रहे थे यहां पे विमिल्डन के ऊपर, दिस हैपेंड एट विमिल्डन, वहां पे पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि नहीं आप ये इसको अंदर आप विमिल्डन के अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। और एग्जैक्टली ऐसा ही अभी कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन पे भी हुआ था, कुछ लोग आना चाहते थे वहां पे और वही पहन के वेयर इज फेंग शुई, तो वहां पे आए तो उन्होंने पहले तो कहा तुम अंदर नहीं जा सकते, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम अंदर जा सकते हो अगर तुम्हारा लार्ज कांग्रेगेशन नहीं और यहां पे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करने तुमने टेनिस के मैच में। तो ये आज फिर से ये चीजें अपीयर होनी शुरू हो गई हैं वहां पे, ये विमिल्डन में अब हुई हैं और लोग एक्चुअली पूछ रहे हैं कि भाई चाइना से पूछो ये कहां है लड़की। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज, जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उसने एज अ गुड विल अम्बेसडर शाहीन शाह अफरीदी जो है उसको, ये देखें जी बड़ी प्यारी तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं हमारे टीवी देख रहे हैं उनको ये नजर आएंगी, उनको उन्होंने लिया है एज गुड विल अम्बेसडर। केपी की पुलिस ने कहा है एक स्पेशल सेरेमनी इनके लिए करते हुए कि जी, और यहां पर केपी के आईजी भी थे मुअज्जम जा अंसारी, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए भी ऑनर है, और इन्होंने कहा शाहीन शाह अफरीदी ने कि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी ऑनर है कि टू बी एन ऑनररी डीएसपी। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा ही पे ट्रिब्यूट्स टू पुलिस मार्टर्स और उनको सल्यूट किया, और उन्होंने कहा इनकी जॉब बड़ी टफ है, वो कहते हैं मुझे इसलिए भी पुलिस से प्यार है क्योंकि मेरे अपने वालिद साहब भी पुलिस में थे और मेरा जो एक भाई है वो भी अभी इसी में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, मैं जानता हूं कि इनका काम सख्त है लेकिन फिर भी अपनी जान की बाजी लगाते हुए क्राइम्स को कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं
भी आई
एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस,
इज अ वेरी गुड जेस्टर।
यस नाइस,
ये थी हमारी आज की
खरबें
खरबें।
yes.
और इन खरबों का छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, और छोटे से ब्रेक के बाद हम लेके आएंगे फयाज बिलाना साहब को, और आप 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है, मगर जब हम आपको कहेंगे उस वक्त फोन कीजिएगा वरना फिर आपको बड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा।
yeah.
पहले जरा उनकी बातें सुन लें उसके बाद, तो पहले लिए चलते हैं हम आपको कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे।
Save big big bucks. Polystream Auto Glass, windshield repair and replacement. Small chip ho ya scratch, professional staff karenge aapki windshield repair minton mein, wo bhi insurance claim ke saath. Special chip repair promotion of $60 only. Serving in Mississauga, Milton, Oakville, Burlington or Hamilton mein. For service call today 905-818-8472. 905-818-8472.
Ontario is open for business and pleasure. Let us celebrate life again. Come to TD Mosaic Festival and celebrate our art, our culture, and our cuisine. Let's meet on July 22nd and 23rd for the 17th Annual Mosaic Festival at Mississauga's Celebration Square and enjoy the award-winning festival with those who matter the most to you, your family and friends. Free admission and parking. More information, visit mosaicfest.com.
क्या आपको मॉर्गेज के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? मॉर्गेज डिलीजेंट के मुकेश चौहान कैन हेल्प विद 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। ही स्पेशलाइजेस इन मॉर्गेजेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉल मुकेश चौहान 6475127000। और अगर आपको बैड क्रेडिट, कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी जैसे इशू हैं और बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है, वेदर यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर और नीड रीफाइनेंस और प्राइवेट मॉर्गेजेस, कॉल मुकेश चौहान 6475127000 7000 FSRA 10252 condition applies.
Sammanik Bal Films, ARY Films and Six Sigma Plus presents the much-awaited film London Nahi Jaunga.
Meri ammi bachpan se hi mujhe dekhkar kehti thi, mera Jameel kodi kab chadega? Banda zabardasti ki shaadi mein kodi to chad jata hai. Shaadi paave muh ke bal ja pade. Bagair mohabbat ki shaadi bhi koi shaadi? Niri beswadi.
Releasing on Friday, 8 July in cinemas near you. A rising star entertainment release.
Hello and welcome to our special segment now. Special इसलिए है क्योंकि अब फियाज भाई जो हैं हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं, जरा वो हमें अंदर की खबरें देते हैं, तो आपको भी बड़ी खुशी होती है उनकी अंदर की खबरें सुन के, और जब वो अपनी बात पूरी कर लें तो जैसे माजिद भाई ने कहा उसके बाद प्लीज आप कॉल कर सकते हैं और उनसे हर तरह का सवाल कर सकते हैं, اور اس وقت ہم لیتے ہیں فیاض ولانا صاحب کو. فیاض بھائی کیسے ہیں؟
السلام علیکم آپ کو بھی اور آپ کے تمام پروگرام سننے دیکھنے والوں کو بھی. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں اور ماجد بھائی کیسے ہیں؟
بس ہم بھی ٹھیک ہیں, ویسے ہی ہیں ہم. ماجد بھائی تو دوائی جو ہے وہ کھا رہے ہیں, میں نے دوائی کھانی چھوڑ دی ہے کیونکہ ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا اس کا. تو ماجد بھائی کو لگ رہا ہے شاید اس دوائی کا اثر ہو جائے, مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوئے گا, اس لیے میں نے چھوڑ دیا وہ کھا رہے ہیں. لہٰذا ہم ویسے ہی ہیں. اچھا جی بتائیں کوئی اندر کی خبریں ہمیں, کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ بڑا زبردست پھر سے جی یہ ویکینڈ کے اوپر جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا, اور صرف اے آر وائی دکھا رہا تھا اور کوئی چینل نہیں دکھا رہا تھا, وہ ایک چھوٹی سی جلسی تھی جو مریم نواز کی وہ دکھا رہے تھے. ناٹ دیٹ وی آر اگینسٹ اور اینی تھنگ, بٹ وہاں پہ 14,000 بندہ تھا, ادھر کوئی پتا نہیں 1.5 million بندہ اس کو دیکھ رہا تھا. تو کیا چیک ہو رہا ہے ذرا بتائیں؟
جو آپ دیکھ رہے تھے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں. چیزیں وہ ہیں جو بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے کام. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اگلے الیکشن کی ریہرسل کہہ لیں آپ, نیٹ پریکٹس کہہ لیں, کیونکہ دو کام ہوئے ہیں, کراچی میں کام ہوا ہے اور ایک پنجاب میں ہونے والا ہے. آپ پہلے کراچی والا کر لیں اور پھر پنجاب والا کر لیں.
جی جی جی.
کراچی میں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ حیدرآباد اپنا بابر غوری صاحب امریکہ میں ہوتے تھے ہیوسٹن میں, اور 2015 میں اپنی خود ساختہ جلا وطنی انہوں نے اختیار کی تھی, اور 2015 سے 2022 تک 7 سال سے ایک بندہ امریکہ میں ہیوسٹن میں رہ رہا تھا, وہاں بزنسز کر رہا تھا, اس کی فیملی تھی, بچے تھے, سارا کچھ ایزی لائف گزار رہا تھا. اب وہ اچانک پاکستان پہنچ گیا, اور پہنچتے ہی ایئرپورٹ سے اسے اریسٹ کر کے تو وہاں پہنچا دیا گیا جہاں پہنچایا جانا تھا اسے. تو وہ بابر غوری بہت سیانہ آدمی ہے, اور وہ اس طرح تو نہیں گیا کہ بغیر کسی اطلاع کے بغیر کسی اس کے چلا گیا ہو, اور اسے پتہ بھی ہو کہ میرے خلاف کیسز ہیں اور نیب کے کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں اور چیزیں ہیں, تو میں وہاں جا کے کوئی اس نے وہاں جا کے کوئی جھولے تو نہیں جھولنے تھے. تو اس کے سارے معاملات طے ہوئے ہیں تب وہ گیا ہے. اب اسے وہاں سے اریسٹ کیا گیا ہے, وہاں نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے, اور نامعلوم مقام پہ نامعلوم افراد ہوتے ہیں اور نامعلوم معاملات طے ہوتے ہیں, اور نامعلوم معاملات جب طے ہو جاتے ہیں, جب وہ سائن اگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو بی آر بچہ فار نیکسٹ فرام ہیئر آن, تو آپ کو یاد ہوگا کہ 23 مارچ 2016 کو اسی طرح کراچی میں ایک تجربہ کیا تھا انہوں نے, مصطفیٰ کمال کو اور انیس قائم خانی کو انہوں نے پاک سرزمین پارٹی ایک بنائی تھی, ایم کیو ایم کو, لوگوں کو الٹرنیٹ راستہ وے آؤٹ دینے کے لیے. تو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اپنی تمام تر کوششوں سپورٹ سارا اس کے باوجود وہ ریزلٹ نہیں دے سکے وہاں, نہ پچھلے الیکشن میں وہ ایک سیٹ جیت سکے, نہ وہ اس ابھی اس میں کچھ دکھا سکے ان کی ایکٹیویٹی. تو اب یہ ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ یہاں ہمارے کینیڈا مسی ساگا میں ہوتے تھے حیدرآباد رضوی,
یس دیٹس رائٹ,
ان کی فیملی, بچے, بھائی, بہنوئی, بھابیاں سارے وہاں یہاں ہیں ابھی تک, اور وہ یہاں ایک دفعہ بہت تنگ پڑے تھے, بالکل گھر بیٹھ بیٹھ کے بور ہو رہے تھے, اور بیوی کی شکل دیکھ دیکھ کے اور بیوی ان کی شکل دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئی تھی. تو انہوں نے ایک دفعہ جا کے اوبر والوں کے پاس جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا, اور انہوں نے اوبر چلانی شروع کر دی. اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں, حالانکہ اس میں محنت میں عظمت ہے, محنت میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے, لوگوں کو چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اس طرح نہ لیں کہ اوبر ساری دنیا چلا رہی ہے, تو اگر حیدرآباد رضوی نام کا کوئی بندہ پاکستانی باشندہ جہاں چلائے گا تو اس میں کیا عرض ہے؟ کوئی عرض نہیں ہے, کوئی بھی چلا سکتا ہے, محنت کر رہا ہے, کوئی مانگ تو نہیں رہا, نہ کسی ڈکیتی کر مار رہا ہے, نہ چوری کر رہا ہے, نہ کوئی کسی کی جیب نہیں کاٹ رہا, تو آپ اسے کرنے دو. لیکن کسی بندے نے رائڈ کال کی اور اس کی فوٹو وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے تو اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, پھر اسے بچوں نے, بیوی نے, سب نے کہا کہ آپ کو کہا تھا بابا یہ نہ کرو, تو پھر وہ انہوں نے اوبر چلانی چھوڑ دی. وہ یہاں تھے, درمیان میں ایک دفعہ وہ دل برداشتہ ہو کے وہ کراچی چلے گئے خود ہی, بغیر ذمہ دار لوگوں سے, نامعلوم افراد سے پوچھے بغیر ہی وہ کراچی پہنچ گئے. جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے حیدرآباد رضوی صاحب, تو نامعلوم افراد کو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر انہیں روک لیا, اور وہاں ہی وہ پہنچ گئے, اور انہوں نے وہاں ہی اس کی گوشمالی شروع کر دی. تو انہوں نے کہا جب آپ کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں آنا تو آپ کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تنگ پڑ گیا تھا اور میں جو ہے کروں گا جو آپ کہیں گے میں کروں گا, میں آپ کی اس کے لیے انسٹرکشن لینے آئے. انہوں نے کہا انسٹرکشن ہمیں پتا ہے آپ کو کہاں دینی ہے, ہم ٹورانٹو میں بھی آپ کو انسٹرکشن دے سکتے تھے, آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کے بعد 6 گھنٹے کراچی ایئرپورٹ پہ یہی بات چلتی رہی, اس نے اپنے لنک شنک لڑائے کہ مجھے جانے دیا جائے باہر, انہوں نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے کیونکہ تمہارے ابھی ڈیوٹی نہیں لگی, ابھی کچھ اور لوگوں کی ڈیوٹی ہے. پھر اسے وہاں سے جہاز میں بٹھا کے دبئی بھیج دیا گیا, और ये 6 दिन दुबई में बैठे रहे और वहां से मिनतें तरले करते रहे कि नहीं नहीं आप जो कहेंगे जिस तरह कहेंगे मैं इसी तरह आपकी खिदमत करूंगा, मुझे कराची जाने दें, मैं वापस कनाडा नहीं जाना चाहता, वहां मेरी कोई लाइफ नहीं है, मैं तंग आ गया हूं। लेकिन उन्हें कहा गया कि नहीं जब हम कहेंगे तब। अब बाबर गौरी साहब 7 साल बाद वापस गए हैं, अब कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि हैदराबाद रिजवी साहब भी नमोदार होंगे कराची में, फिर इन दोनों को वहां लॉन्ड्री के लिए इनकी लॉन्ड्रिंग होगी, इनकी धुलाई होगी, इनको साफ नीट क्लीन करके साफ सुथरा करके बाहर फिर मंजरेआम पर लाया जाएगा।
अच्छा।
और उससे पहले आपने देखा कि फारूक सत्तार साहब को भी कहा गया और फारूक सत्तार को एमक्यूएम वाले राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को जो है वो पब्लिक से रिस्पांस नहीं मिला, तो उन्होंने वही फारूक सत्तार जिसको उन्होंने इंतहाई खराब जलील करके कहें, अच्छा लफ्ज नहीं है लेकिन और कोई लफ्ज मुझे मिल नहीं रहा था, उसे इंतहाई डिस्ग्रेसफुली फारूक सत्तार साहब को उन्होंने एमक्यूएम से निकाला। लेकिन अब चूंकि उन्होंने देखा है कि हम कराची में एमक्यूएम का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो वो फारूक सत्तार साहब को वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को ये मालूम हो गया है कि ये खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी टीम जो है ये कराची वालों के दिल से उतर चुकी है। अब दोबारा क्योंकि वहां कराची में पीटीआई इस वक्त भी टॉप पे है जितने सर्वेज आ रहे हैं, तो अब कराची में एमक्यूएम के मुतबादल लीडरशिप के तौर पर बाबर गौरी और हैदराबाद रिजवी और कुछ और लोग उन्हें जो है एक्टिव किया जाएगा, एक तो ये हो रहा है। दूसरा कराची में क्योंकि इस वक्त 21 नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की और मर्दमशुमारी की दुरुस्तगी का जिस तरह वादा किया गया है कि वहां दोबारा मर्दमशुमारी करा दी जाएगी कराची में, और दोबारा अगर वो करा दी जाए और वहां दुरुस्तगी हो जाए तो 21 से 28 कौमी असेंबली की सीटें हो जाने का इम्कान है। और सूबाई असेंबली की सीटी कराची में सीटें इस वक्त हैं 44, वो 44 से बढ़ के 58 हो जाएंगी। अब नामालूम अफराद जो हैं वो इस कैलकुलेशन में हैं कि अगर हम कराची में किसी और पार्टी को 58 सूबाई असेंबली की सीटों में अक्सरियत दिला दें तो फिर इंटीरियर सिंध में कितनी सीटें और जीडीए को लेकर देनी पड़ती हैं ताकि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी ना बना सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नामालूम अफराद को जैसे भी हैं नामालूम अफराद वो फिर भी देखते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने एक सूबे का बेड़ा गर्क किया है तो क्या वो इस हद तक गर्क कर दिया है कि अब दोबारा उस सूबे के उठने के इम्कान नहीं है। तो उनकी कैलकुलेशन ये है कि वाकई पीपल्स पार्टी ने इस हद तक वहां बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब अगर आइंदा इलेक्शन में दोबारा पीपल्स पार्टी को वहां मौका दिया तो सिंध बहुत हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए पीपल्स पार्टी को अब केपीके में और आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को एंट्री दी गई, वहां उसे अपोजिशन बना दिया गया, आजाद कश्मीर असेंबली में ऑफिशियल अपोजिशन इस वक्त पीपल्स पार्टी है, इधर स्पेस दी जा रही है पीपल्स पार्टी को केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में, आइंदा इलेक्शन में केपीके में स्पेस थोड़ी सी दी जाएगी, पंजाब में थोड़ी सी स्पेस ज्यादा दी जाएगी पहले से ज्यादा, अब इस वक्त 7 MP हैं उनके तो शायद उनके 25-30-35 हो जाए, उन्हें इधर स्पेस दी जाएगी और पीपल्स पार्टी से सिंध से स्पेस लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब वो स्पेस लेने की कोशिश पे जो काम हो रहा है उसमें वहां की मर्दमशुमारी सिंध की दोबारा कराना और वहां ये तजर्बे करना बाबर गौरी और हैदराबाद रिजवी के, और साथ साथ अगर पीटीआई के साथ नामालूम अफराद के मामलात आइंदा इलेक्शन के हवाले से तय हो गए तो उसकी भी तैयारी अभी से हो रही है ताकि आइंदा इलेक्शन में वहां से फिर पीटीआई को जिता के तो सिंध की गवर्नमेंट पीटीआई को दे दी जाए, क्योंकि जो नामालूम अफराद हैं वो कोई जज्बाती अंदाज में काम नहीं करते, वो इंतहाई सिस्टमेटिक काम करते हैं कि उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी मौजूद होते हैं और इन तमाम प्लान्स में हमारे जरदारी साहब भी फिट होते हैं, इमरान खान साहब भी फिट होते हैं, मरियम नवाज भी फिट होती हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी फिट होते हैं, उन्होंने सबको लारे पे रखा हुआ होता है, एन मौके पे पता चलता है कि एक को पिक कर लिया है बाकी सबके साथ हाथ हो गया। तो एक तो ये सिंध में हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि पिछले इलेक्शन में लियारी या पीपल्स पार्टी का गढ़ था, लेकिन पिछले 5 साल में लियारी की दीवारों पे ये लिखा जाता रहा कि जालमो लियारी जा रहा है, जालमो लियारी जा रहा है, लियारी की दीवारों पे ये लिखी गई थी, ये दीवारें लिखी गई थी, जालमो लियारी जा रहा है, लेकिन जरदारी साहब इसको नहीं समझ सके, वो सिर्फ माल बनाने में, नोट छापने में, कब्जा ग्रुपों को और उजैर बलोच जैसे लोगों को की सरपरस्ती करने में लगे रहे, उन्होंने ये दीवारें, ये नविश्ते दीवार नहीं पढ़ा उन्होंने। तो वहां हालांकि 48 ईयर्स बैक हारून खानदान की लियारी में दाख बैठी हुई थी, हारून खानदान से 48 ईयर्स बैक पीपल्स पार्टी छीनी थी भुट्टो ने, पीपल्स ये लियारी छीनी थी भुट्टो ने, और उसके बाद आज तक वहां पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं जीत सका। लेकिन पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 39,000 वोट लिए थे, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अहमद बख्श ने 42,000 वोट लिए थे और पीटीआई के शकूर शाह ने 52,000 वोट लेकर वो कौमी असेंबली का मेंबर बना था। तो कराची में अगर वहां ये हालात हैं पीटीआई के कि वहां कौमी असेंबली की 21 में से 14 सीटें पीटीआई के पास हैं और सूबाई असेंबली में भी उनके पास 48 में से 21 सीट्स पीटीआई के पास हैं इस वक्त। अच्छा। तो कराची में इस वक्त पीटीआई की आप देखें, इमरान खान ने अभी भी जब किया है अपना ये जो अभी लॉन्ग मार्च वगैरह, तो उसने 3 जलसे सिर्फ किए थे, एक उसने कराची में किया था, एक लाहौर में किया था और एक शायद मुल्तान में किया था, और उसके बाद उसने इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च कर लिया। तो कराची में पीटीआई वाले बहुत चार्ज हैं और नामालूम अफराद के पास सिंध में एक प्लान में पीटीआई भी मौजूद है और एक प्लान में उनके पास एमक्यूएम का जो वोट है उसको भी कोई रास्ता कोई उसे भी स्पेस देने का एक प्लान उनके पास मौजूद है। लेकिन अगर उन्होंने वापस लंदन में बैठा हुआ शख्स, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा मानना यह है कि उसका नाम लेने से मेरी जबान जो है वो नापाक हो जाएगी, क्योंकि उसने 22 अगस्त 2017 को मेरी माँ को, आपकी माँ को, अपनी माँ को और पाकिस्तान को उसने गाली दी थी, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता। वो बंदा एक प्लान ये भी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उसे वापसी का रास्ता दे दिया जाए, लेकिन अगर उसे वापसी का रास्ता दे दिया गया तो ये नामालूम अफराद पे और हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत बड़ा धब्बा होगा कि वो कहेंगे कि आप जो है आपने मजाक समझा हुआ है हमें, पहले आप एक बंदे को हीरो बनाते हैं, फिर आप उसे जीरो बनाते हैं और फिर अब हमें कहते हैं कि उसे फिर दोबारा हम हीरो मान लें, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। तो लेकिन उनके प्लान
लेकिन फियाज भाई, इन्होंने जो जुल्म वहां पे भी उठाया हुआ था, भत्ते लेने, लोगों को उठाना, मारना, डराना, तो ये तो मतलब एक गुंडागर्दी चल रही थी ना वहां पे, तो अंडर देम, तो ये तभी तो ये ऑपरेशन क्लीन अप लेकर आए थे वो लोग।
और आप देखें कि वहां वो बंदा जब आया था और उसने जब वहां अपना बनाया हुआ था सिलसिला, तो उस वक्त वहां सिर्फ ये नहीं हुआ था कि उसने उर्दू स्पीकिंग लोगों को लीड किया था, उसकी उस नफरत आमेज सियासत की वजह से वहां पख्तून और पंजाबी, उन्होंने बाकायदा पंजाबी पख्तून इतिहाद बना था जिसका गुलाम सरवर खान लीडर था। और उसके बाद आप देखें कि कराची में इस वक्त भी 25 से 30 लाख पश्तून आबाद हैं, और वहां पश्तून और पंजाबी जितने हैं वो, अगर आपने दोबारा वही वहां लसानियत का सिलसिला शुरू करना है फिर तो आप उसे ले आए जो लंदन में बैठा हुआ है बंदा, लेकिन अगर आपने उसे अवॉइड करना है तो फिर उनके पास ऑप्शन यही है कि वो इमरान खान को राम कर लें और पीटीआई को, क्योंकि कराची में रहने वाले जो पश्तून हैं अक्सरियत वही, आप देखें ना फहीम खान और वो जितने इनके वहां से जीत के भी अंधे एमपीए और एमएनए आए हैं, खुरम नवाज खान, खुरम शेर खान और वो सारे, वो ज्यादा पश्तून बैकग्राउंड के लोग हैं। और पश्तून जो कराची में 25-30 लाख पश्तून रहते हैं, उन्हें केपीके से फीडबैक मिलता है कि वहां केपीके में पीटीआई ने किस तरह लोगों की जिंदगियों में कुछ बेहतरी लाई है, तो वहां से जो उन्हें फीडबैक अपने बैक होम से पश्तून उससे मिलता है, उसका असर ये होता है कि कराची में वो पक्के इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो वहां अगर इमरान पीटीआई के अलावा कोई और तजर्बा करने की कोशिश की गई तो वो शायद इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी, लेकिन अब इट ऑल डिपेंड्स कि इमरान खान राम भी होता है या नहीं होता अगले इलेक्शन के लिए। दूसरी, अब आ जाए पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में इस वक्त फुल टाइम नेट प्रैक्टिस चल रही है और 7 जुलाई से 15 जुलाई तक सिर्फ 10 दिन में इमरान खान ने 16 जलसे करने हैं। और अब मरियम नवाज ने अपनी टीम को कहा है कि इमरान खान ने 16 किए हैं तो मैंने 16 से कम तो नहीं करने, मैं 2 ज्यादा, मैं 18 जलसे करूंगी। अब आप कहेंगी कि जो मरियम तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ग्रुप था वो तो शहबाज शरीफ ग्रुप के खिलाफ है, तो मरियम कैसे जलसे कर रही है। जो प्लेयर होता है ना, जो खिलाड़ी होता है, उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो उसे आप टेप बॉल का पकड़ा दें या हार्ड बॉल पकड़ा दें, वो कहता है कि मैंने चौके मारने हैं, छक्के मारने हैं, मुझे आप ग्राउंड दें, बस मेरे चौके छक्के फिर देखें। वो नहीं देखता कि ये T20 है या वनडे है या टेस्ट मैच है, उसने तो अपना स्किल दिखानी है। और मरियम नवाज की स्किल यही है कि वो क्राउड पुलर है। अब उसने अपने चचा से मामलात उसके अभी तय नहीं हुए, लेकिन वो 3-4-5 जलसे करने के बाद चचा के साथ दोबारा उनकी फैमिली की बैठक होगी, दोबारा वो फैमिली से उसके साथ डील करेगी, फिर अब्बा से कहेगी कि अब्बा जान बता दें चचा को कि क्राउड पुलर मैं हूं, मैं जलसे बना रही हूं और ये पंजाब का जिमनी इलेक्शन भी मेरी वजह से बन रहा है, और अगर हमारे को जीतने के इम्कान पैदा हो रहे हैं तो मेरी वजह से बन रहे हैं, चचा से लिखवा लें कि अगर मैं ये जीत गई जिमनी इलेक्शन तो आंधा इलेक्शन में भी मैं ही कंपेन को लीड करूंगी और आंधा प्राइम मिनिस्टर भी मैं ही होंगी, ये अभी चचा से बात मनवा लें। लेकिन चचा क्योंकि अभी समझ नहीं रहे इस बात को और चचा इक्तदार के नशे में है, इसलिए मरियम नवाज 4-6 जलसे करने के बिल्कुल ऐन दरमियान में जाके कहेगी कि हाँ अब बताएं बाकी मैं जलसे करूं या आप हमजा खुद संभाल लेगा अपनी कंपेन। जबकि हमजा ने सुप्रीम कोर्ट में कह के भी आया है कि मैं जो है वो जिसको वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इसे हम वज़ीर आला बना रहे हैं, तो वहां सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि इसे निगरान वज़ीर आला बना रहे हैं या क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके लिए हम कोई और नाम ढूंढ लेंगे, ये निगरान वज़ीर-ए-आला नहीं है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट वो नाम ढूंढ रही है कि ये कौन सा वज़ीर-ए-आला है। लेकिन आपको याद होगा कि जू ही वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले थे तो मीडिया वालों ने लोगों उनसे पूछा बाबर अमान से कि ये कौन से वज़ीर-ए-आला बने हैं हमजा, तो उन्होंने कहा था वो मशकूक वज़ीर-ए-आला बने हैं।
लेकिन अभी तो बाई इलेक्शन आने वाले हैं वहां पे पंजाब में।
हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अभी वज़ीर-ए-आला हमजा है लेकिन इनके इख्तियारात ना फुल वज़ीर-ए-आला वाले होंगे ना निगरान वज़ीर-ए-आला वाले होंगे, तो वो अभी तक पता ही नहीं कि उनके इख्तियारात क्या हैं, तो इसलिए बाबर अमान ने उसे मशकूक वज़ीर-ए-आला कहा था। तो ये मशकूक वज़ीर-ए-आला साहब ना तो खुल के जलसे कर सकते हैं ना पब्लिक में इनकी उस तरह की वो एक्सेप्टेंस है, इसलिए जलसे तो मरियम ही करेगी तो कामयाब होंगे, और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी नहीं कर सकते, उसे भी फिर मुदाखलत समझा जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट मुदाखलत कर रही है, हालांकि फेडरल गवर्नमेंट तमाम तर मुदाखलत कर रही है। और पंजाब में ये इमरान खान ने अगर फुल फ्लेज वहां जाके कंपेन चलाने की कोशिश की है तो इट मींस कि ही इज एग्रीइंग टू व्हाट एवर इज हैपनिंग। उससे पहले तो वो कौमी असेंबली से भी इसलिए वजह से निकला है कि मैं इसने सेटअप को मानता नहीं हूं। अगर आप फेडरल में सेटअप को नहीं मानते तो फिर पंजाब में सेटअप में हुकूमत बनाने के लिए या जिमनी इलेक्शन जीतने के लिए आप क्यों इतनी तगोदो कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को यह समझाया गया है नामालूम अफराद की तरफ से कि जनाब ये मौका है, आपके जितने सर्वेज आ रहे हैं जो कुछ रिपोर्टें आ रही हैं अगर वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इमरान खान जीत रहा है तो दिस इज द टाइम टू प्रूव इट कि यस वाकई आप जीत रहे हैं और आप डिलीवर कर सकते हैं, आप रिजल्ट लेके आ सकते हैं। इमरान खान साहब ने के बंदों ने कहा कि जी वो इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा जी कि नामसाद हालात में अगर आप जीत के आते हैं तो फिर तो यकीन ही होगा कि आइंदा इलेक्शन में हम आपका साथ देंगे जितना दे सकेंगे, नामसाद हालात में ही रिजल्ट लेके आना है तो कमाल है। और आपका कप्तान तो कहता था कि मैं जो है जैसी भी पिच हो मैं रिजल्ट देता हूं, तो पिच अगर अब डिफिकल्ट है तो उसे कहें कि अपनी गुगली इस्तेमाल करे, अपना अपनी रिवर्स स्विंग इस्तेमाल करे, अपनी स्पीड इस्तेमाल करे, अपने तजर्बा इस्तेमाल करे, अब जो दिखाना है दिखाए उसे। तो इमरान खान को कहा गया कि जो तुम जल से करो, जो तुमने करना है करो। तो आइंदा 10 दिनों में इमरान खान ने 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक वहां 16 जलसे करने हैं, एक दिन में 2-2 जलसे करने हैं उसने।
लेकिन बीच में ईद आ रही है, बीच में तो ईद आ रही है, बीच में ईद आ रही है और ईद की 4 छुट्टियां दे रहे हैं पाकिस्तान में,
वो छुट्टियां दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने जलसे कम नहीं करने, इमरान खान का जो शेड्यूल आया है उसमें कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। इमरान खान तो एक आज ईद वाले दिन जिस दिन ईद पड़नी होगी उस दिन, और वो उस दिन भी वो जहां ईद पड़ेगा वहां जलसा ही होगा। तो वो इमरान खान का ये नेट प्रैक्टिस हो रही है, अपना इलेक्शन कमीशन की नेट प्रैक्टिस हो रही है कि उन्होंने धांधली के कौन कौन से तरीके आजमाने हैं और इलेक्शन के बाद वो साबित होगा कि कौन कौन से धांधली के तरीके वो कामयाबी से आजमा चुके हैं और कौन कौन सी धांधली उनकी किस किस जगह, कौन कौन सा डीपीओ, कौन कौन सा प्रिजाइडिंग अफसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर कमजोर रहा और उसकी धांधली पकड़ी गई। तो जो पकड़ी जाएगी उसे वो अपना क्रेडिट शो करेंगे कि देखें जी फलां फलां हल्के में धांधली हो रही थी हमने पकड़ लिया। और जहां जहां उनकी धांधली कामयाब हो जाएगी वहां वो जाके शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को कहेंगे देखें जी हमने आपको रिजल्ट दिया ना। तो अभी तक वहां जो सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे के मुताबिक 14 हलकों में लीड कर रही है पीटीआई, 4 हलकों में मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है और 2 हलकों में नेक टू नेक मुकाबला है। अब इस 14 को 4 में कैसे कन्वर्ट करते हैं और 4 को 14 में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है ये सारा तमाशा देखना है कौम ने। क्योंकि आप देखें कि अभी तक जो धांधली का सिलसिला तो शुरू हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल वहां एक लाहौर में एक 2 जगह ऐसी पकड़ी गई हैं कि वहां जो लोकल काउंसलर हैं जो मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड के साथ एप्लीकेशन दिया है कि ये बंदा फॉर एग्जांपल फयाज वलाना ये इस हल्के में नहीं रहता, इसका वोट फलां हल्के में मुंतकिल किया जाए और साथ एज तस्दीक कुनंदा अपना शनाख्ती कार्ड लगाया है। लाहौर में वो पकड़े गए हैं इनकी काउंसलर खवातीन काउंसलर और दूसरे एक आतिफ मुनीर है और एक और नाम मुझे भूल गया। उन्होंने एक बंदे ने अपने 200 शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपियां कराई और 200 एप्लीकेशनें दी 200 बंदों के वोट ट्रांसफर करने के लिए और साथ एक ही बंदे की काउंसलर की 207 फोटो कॉपियां लगी हुई हैं। इसी तरह के वो कहते हैं कि इन्होंने हर काउंसलर की जिम्मेदारी लगाई और हर काउंसलर ने अपने तौर पर, क्योंकि काउंसलर तो एक बिल्कुल गांव की सतह पे वार्ड की सतह पे होता है, उन्हें पता होता है कौन कौन सा खानदान पीटीआई का है और किस किस इलेक्ट ने हमें वोट मांगने गए हैं तो जवाब दे दिया कि नहीं जी हम आपको नहीं देंगे। उन्होंने तो घर पे झंडा लगाया हुआ पीटीआई का और उनके बच्चे बड़े जज्बाती हैं, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला था, अंदर से गालियां दी थी और उन्होंने कहा था कि लोटों को हम वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने वापस आके मार्क कर दिया कि ये लोग हैं जी ये वोट हमें नहीं दे रहे, एलानियां ये नर गालियां देते हैं, कहते हैं आप लोटों को मुस्लिम लीग नून को हमने वोट नहीं देना। उन्होंने उन लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम एप्लीकेशनें दे के, क्योंकि लोकल जो नंबरदार है या काउंसलर होता है वो एप्लीकेशन देता है कि जी इस बंदे का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। अब वो जो इलेक्शन कमीशन के पंजाब में बंदे हैं वो तस्दीक नहीं करते उस बंदे से जो वोटर है उससे, वो कहते हैं जी काउंसलर ने कह दिया है, नंबरदार ने कह दिया है, इस इलाके के इस मौजूद ने कह दिया है तो हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब वो बंदा वोट डालने जब जाएगा उस दिन 17 जुलाई को, उस दिन उसे पता चलेगा कि मेरा वोट तो इस जिले से 4 जिले दूर वहां ट्रांसफर हो गया है। हत्या के कुछ पंजाब में, साउथ पंजाब में ऐसे हलके पता चले हैं जहां लोगों का वोट पंजाब से सिंध में मुंतकिल कर दिया गया है, सूबे से ही निकाल दिया गया है। अब वो एक दिन में प्रिजाइडिंग अफसर या वो मौके तौर पर, ये कनाडा वाला सिस्टम तो नहीं है, यहाँ तो आप वॉक इन कर जाएं और अंदर जाके आप अपना आईडी कार्ड दिखा दें और प्रूव कर दें कि आप इस हलके में रहते हैं, तो आपको उसी वक्त वोट बना के आपको वोट कास्ट करने देते हैं कनाडा में। पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तो कोई वोट आपको कास्ट नहीं करने देगा, वो कहेंगे जी आपका तो वोट ही नहीं है यहाँ। तो ये हर हल्के में 15,000 से 20,000 वोट तो इस तरह डिस्टर्ब करने का प्लान बना है। फिर इन्होंने ये किया है कि अभी आप देखें पिछले 10-15 दिन से उन 17 हलकों में लोड शेडिंग जीरो हो गई है, लोगों को खुश करने के लिए देखें जी लोड शेडिंग खत्म हो गई है। लेकिन वहां पीटीआई के लोग इस प्रोपेगंडे को बहुत तेज कर रहे हैं कि ये लोड शेडिंग जो हमारे हलकों में खत्म हुई है ये सिर्फ 17 जुलाई तक है, 17 जुलाई के बाद हम भी आम पाकिस्तानियों की तरह होंगे, 17 जुलाई तक हमारी खिदमत खातर हो रही है, उसके बाद हम भी आम पाकिस्तानी हो जाएंगे, हमारा ये जो फरिश्ता का स्टेटस है ये खत्म हो जाएगा, वी आर नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज एंजल। ठीक है,
तो अच्छा हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे फियाज भाई, टॉप ऑफ द आवर का हमारा वक्त हो गया, उसके बाद हम कंटिन्यू रखते हैं आपके साथ। My God.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.